हम लोग 11वें अध्याय के महात्म्य को सुनेंगे पहले, ग्लोरीज ऑफ 11th चैप्टर, और उसके बाद फिर हम लोग पहले और दूसरे श्लोक को जितना हो पाएगा करने का प्रयास करेंगे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि मैं तुमको 11वें अध्याय की महिमा भगवद गीता के बताऊंगा, इसका महिमा को पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसे हजारों कथाएं हैं इस संबंध में, लेकिन केवल एक कथा मैं बताऊंगा। प्रणीत नाम की एक नदी थी जहां पे एक बहुत बड़ा स्थान था, कहते हैं मेघांकर, और वहां पे भगवान जगदीश्वर का एक मंदिर था। वहां पे जगदीश्वर भगवान धनुष को धारण किए हुए थे। उस मेघांकर नाम के स्थान में एक शुद्ध ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था सुनंद, जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहा। सुनंद जगत ईश्वर के सामने बैठा करता और 11वें अध्याय भगवद गीता का पारायण करता। पारायण मतलब बोलता था उसको, और भगवान के विश्व रूप का वह स्मरण करता था। और 11वें अध्याय का रोज रोज पारायण करने से उसको अपनी इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ और भगवान जगदीश्वर का वह सदा ही स्मरण करने में सक्षम हो पाया। एक बार वह शुद्ध ब्राह्मण सुनंद तीर्थ भ्रमण करने के लिए गया था और वह गोदावरी नदी के पास पहुंचा। उसने बहुत सारे वस्तुतः वह उन तीर्थों का में जा रहा था जो गोदावरी नदी के तट पे थे, बात बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं कि एक विरज तीर्थ नाम का स्थान है गोदावरी के तट पे, वो वहां पहुंचा। जहां पे भी वो पहुंचता, जिस भी तीर्थ स्थान में पहुंचता, बस वहां पे वह स्नान करता, वहां के भगवान के जो भगवान हैं उनका वह दर्शन करता। एक दिन वह विवाह मंडप नाम के एक स्थान में पहुंचा। उसके साथ में कुछ लोग थे, तो उन लोगों ने ढूंढा कि भी कोई रहने का स्थान मिल जाए, और अंततोगत्वा एक धर्मशाला को ढूंढ लिए। धर्मशाला में वो रहे और रात्रि में वह रुके उस धर्मशाला में। कौन लोग? सुनंद और उसके साथ के लोग। अब बड़ी अद्भुत घटना होती है। सुनंद जब सुबह उठता है, देखता है कि उसके सारे जो बाकी के साथी थे वह सब गायब हो गए हैं। तो जब उनको ढूंढने लगा, तो ढूंढते ढूंढते वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह मुखिया उसके चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे महान ऋषि, सुनंद को बोला, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पार्षद समझते हैं आपके साथी लोग कहां गए, लेकिन मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि आपके समान कोई भक्त नहीं है। मैंने आपके समान कोई शुद्ध व्यक्ति नहीं देखा। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं आपसे ये याचना कर रहा हूं कि आप इस ग्राम में, इस गांव में रहिए। तो जब सुनंद ने उस गांव के मुखिया की नम्र प्रार्थना को सुना, तो उन्हें निश्चय किया कि वह उस गांव में रहेंगे। और सुनंद के रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था उस गांव के मुखिया ने, ग्राम प्रधान ने करी, और दिन रात उसकी सेवा करने लगे। 8 दिन इस प्रकार बीत गए और एक गांव का व्यक्ति सुनंद के सामने आया और जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने कहा, हे शुद्ध ब्राह्मण, पिछली गत रात्रि में एक राक्षस मेरे बच्चे को खा गया। तो सुनंद ने पूछा कि वह राक्षस कहां रहता था और उसने आपके बच्चे को क्यों खाया, किस प्रकार से खा लिया। तो उस ग्रामीण ने कहा, ग्रामीण का मतलब समझते हैं, ग्रामीण का अर्थ होता है गांव में रहने वाला। उसने कहा कि इस गांव में एक बहुत भयानक राक्षस रहता है जो हर दिन गांव वालों को खाता था जैसी उसकी इच्छा होती थी। तो एक दिन हम सब लोग उस राक्षस के पास गए और उसे प्रार्थना करी कि वह हमारी रक्षा करे और इसके बदले में हम उसका नित्य रोज का खाना उसको दिया करेंगे। जब वह धर्मशाला बनाई गई, उसके बाद एक धर्मशाला बनाई गई जिसमें जो भी यात्री आते थे उनको रहने दिया जाता था और रात में वो राक्षस आकर उनको खा जाता था, ये व्यवस्था थी। इस प्रकार से हम लोग अपनी रक्षा कर पा रहे थे उस राक्षस से। ये कौन बोल रहा है? वो ग्रामीण बोल रहा है सुनंद जी से। आप अपने साथियों के साथ इस धर्मशाला में रुके थे, लेकिन वह राक्षस सबको खा गया लेकिन आपको नहीं खाया। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। गत रात्रि मेरे बेटे का मित्र मेरे पास आया और मैं ये नहीं जानता था कि यह ये लड़का जो है ये मेरे बेटे का बहुत करीबी मित्र है, तो मैंने उसको भी धर्मशाला में भेज दिया रहने के लिए। बाद में जब मेरे बच्चे को, मतलब किसके, इस ग्रामीण के बच्चे को मालूम चला कि मेरा दोस्त गया, तो वो जानता है कि राक्षस से खा जाएगा, तो वह उस धर्मशाला में गया और उसको अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन जब वह वहां पे गया तो उस राक्षस ने इस ग्रामीण के लड़के को भी खा लिया। आज सुबह जब मैं उस राक्षस के पास गया और मैंने पूछा कि उसने मेरे बच्चे को क्यों खाया अन्य यात्रियों के साथ में, और क्या कोई तरीका था जिसके द्वारा मेरा बेटा वापस प्राप्त हो जाए, तो राक्षस ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा बेटा था जो बचाने के लिए गया था और वह धर्मशाला में मतलब प्रवेश किया था, इसलिए अन्यों के संग मैंने उसको भी खा लिया। जहां तक उसको वापस प्राप्त करने की बात है, तो वह तभी संभव हो पाएगा जब मैं इस राक्षस शरीर से मुक्त हूं, और राक्षस शरीर से तभी मुक्त हो सकता हूं, उस व्यक्ति की कृपा से मुक्त हो सकता हूं जो रोज 11वें अध्याय भगवद गीता का पारायण करता है। कितना शक्तिशाली था। अब ये राक्षस बोल रहा है उस ग्रामीण को, इस समय एक ब्राह्मण मतलब सुनंद को इंगित करते हुए कि सुनंद आपके गांव में रह रहा है और इस धर्मशाला में रह रहा है, और उसको मैंने नहीं खाया क्योंकि वह 11वें अध्याय भगवद गीता का पारायण करता है। वैसे आप ये ध्यान दीजिएगा, रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंति इत्यादि श्लोक आएगा भगवद गीता का, उसमें चक्रवर्ती बात कहते हैं कि यह 1136 जो श्लोक है यह स्पेशली भूत प्रेत को भगाने के लिए उच्चारण किया जाता है। ये चक्रवर्ती बात अपनी टीका में लिखते हैं, रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंति इत्यादि श्लोक है, तो उसको इतना शक्तिशाली होने हम देख रहे हैं कि आप हुआ भी इस प्रकार से। तो यदि वह नित्य रूप से 11वें अध्याय भगवत गीता का पारायण करता है और 7 बार पारायण करता है, उसके बाद मुझ पर जल छिड़क देता है, तो मैं इस राक्षस शरीर के शाप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंद ने उस ग्रामीण से पूछा, उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसको राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ? तो उस ग्रामीण ने बोला, कथा याद हो रहा, समझ पा रहे ना? ठीक है। तो ग्रामीण ने बोला कि बहुत समय पहले इस गांव में एक किसान रहा करता था। एक दिन वह अपने खेतों का ध्यान रख रहा था और कुछ दूरी पे एक गिद्ध एक यात्री के ऊपर आक्रमण कर रहा था। उस समय एक योगी पास से ही जा रहा था और उसने भी देखा कि वह गिद्ध उस व्यक्ति पे आक्रमण कर रहा है, उसे बचाने के लिए वह पहुंचा, लेकिन वह योगी को देर हो गई, वह व्यक्ति मर गया। तो उस योगी ने बड़े क्रोध में इस किसान को, जो राक्षस बन गया था, इस किसान को बोला, जो दूसरे को चोर, सर्प, अग्नि और अस्त्रों के द्वारा अगर किसी पे कोई अटैक हो रहा है और कोई आक्रमण कर रहा है और देख रहा है, और यद्यपि वह उसको बचाने में समर्थ हो, फिर भी वह ना बचाए, तो उसको यमराज के द्वारा दंड प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है योगी की बात? कोई व्यक्ति आक्रमित हो रहा है, उसको बचा सकता है, कोई व्यक्ति ना बचाए तो यमराज उसको दंड देते हैं। और नरक में बहुत समय तक दुख भोगने के बाद वह भेड़िया बनता है, और जो कोई इस प्रकार से अगर व्यक्ति परेशानी में है उसकी मदद करता है, तो वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। कोई व्यक्ति अगर एक गाय को एक भयानक जानवर से, किसी निम्न व्यक्ति से बचाने का प्रयास करता है, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। हम स्पष्ट देखिए लिखा हुआ है, गाय की रक्षा कर रहा है, कोई व्यक्ति कठिनाई में है उसकी रक्षा कर रहा है, तो उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते। कभी एक बार याद है वृंदावन चंद महाराज से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी अगर कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है तो उसका हम, वो तो उसके कर्मों के अनुसार है, तो अगर हम उसको बचा रहे हैं तो हम उसे कर्म के विधान में बाधा डाल रहे हैं, तो महाराज जी बड़े क्रोधित हो गए थे। कहते ऐसा नहीं, याद है, बहुत क्रोधित हो गए थे। कहते नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति दुख में है, अगर हमारे पास सामर्थ्य है, यथा सामर्थ्य आप मदद करने का प्रयास करते हो, तो उसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये बात एकदम युक्ति है, ये भागवत ने स्वयं नारद जी बोले हैं। जिस तरह से भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना और दूसरों पर दया दिखाएं, तो भगवान जनार्दन आशु बहुत जल्दी कहते हैं क्या संतुष्ट होते हैं उस व्यक्ति से। क्या तीन पॉइंट्स? जैसे अपनी इंद्रियों पर संयमित रखें, संयम रखें, जो भगवान व्यवस्था रखें उसमें संतुष्ट रखें, संतुष्ट रहें, और तीसरे दूसरों पर दया करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मर्सी, मर्सी देखिए दया का अलग अलग व्यवस्था है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, अब उस समय आप उसको कहो कि आप भगवत गीता का प्रवचन सुनो तो बहुत नहीं। मान लो किसी की हड्डी टूट गए तो आप उसको बोलेंगे देहिनो अस्मिन् यथा देहि, वो नहीं चलेगा उस समय। उसको उस समय यहाँ उसके फ्रैक्चर की या जो भी कुछ कठिनाई है उसको दूर कीजिए और फिर उसके बाद आप कुछ भगवान के बारे में बता सकते हैं। डज इट मेक सेंस? यथा योग्य, जो उसकी आवश्यकता उसके अनुसार कृपा करना। मूल रूप से कृष्ण भावना देना ये तो है ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि मान लीजिए किसी के सर में दर्द है तो नहीं तुम तो शरीर नहीं हो, तो ये बात वहां पे चलेगी नहीं। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण तो है ही कि भगवान के संबंध ज्ञान उसको देना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद उस योगी ने कहा, कहा गया हाँ कि हे खराब क्या कहेंगे, कौन सा था वो किसान, तुमने देखा कि वह गिद्ध उस यात्री पे आक्रमण कर रहा है फिर भी तुमने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, तो अब मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ। भेड़ी जैसा बर्ताव कर रहे हो, भेड़िया बनना ही है तुमको, तो ऐसा करो तुम राक्षसी बन जाओ। इस परम पूज्य सचिनंदन महाराज बहुत बोल रहे थे, बहुत गंभीर बात बोल रहे थे कि कभी कभी अकस्मात व्यक्ति का पतन हो जाता है और उसका कारण क्या है, कहीं किसी अपराध के कारण, कोई शाप के कारण ऐसा व्यक्ति हो जाता है, ना चाहते हुए भी गलत कार्य कर देता है। और इसी प्रकार से आशीर्वाद भी होता है, किसी वैष्णव की सेवा हो गई तो एकदम से देखा कि भक्ति बहुत बढ़ने लग गई। इस संबंध में एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, बहुत सुंदर बात। वो कह रहे थे कि सम्मान देने से हम हमेशा बचे रहेंगे, सम्मान देने से हमेशा हम लोग सेफ रहेंगे। क्यों? अगर किसी जो कोई व्यक्ति जो योग्य नहीं है सम्मान के उसको सम्मान दिया तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी सबको सम्मान देने की आदत है और किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे दिया जो सम्मान के योग्य नहीं है तो कोई कठिनाई है? कोई पाप लगेगा आपको? नहीं लगेगा। लेकिन अगर असम्मान करने की आदत है और ऐसे व्यक्ति का असम्मान कर दिया जिसका सम्मान किया जाना चाहिए तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। एक बात याद आ गई, मैं खाली बोल रहा था कि ध्यान रखना चाहिए, इससे अगर हमको हम शापों से बच सकते हैं, बहुत सारे शाप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सम्मान नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि अगर हम सम्मान, मुझे लग रहा था इस मेरे बोलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें सम्मान, हम सब जब हम सम्मान करते हैं तो हम उससे बचते हैं। किससे बचते हैं? शाप से बचते हैं। सम्मान करने से नहीं बचना है। हाँ मुझे लग रहा था समझ में, समझावट में मिस्टेक हो सकती है। सम्मान करने से हम इससे, मतलब इस शाप की प्रवृत्ति से बचेंगे। वस्तुतः सारे अपराध असम्मान के द्वारा ही होते हैं, चक्रवर्ती पाद इसको बोलते हैं। खैर वो तो एक अलग विषय आ गया, लेकिन बात यह है कि हम लोग इस प्रकार से शापों से बच सकते हैं और आशीर्वाद इकट्ठे कर सकते हैं। तो फिर उस किसान ने कहा कि मैं पूरी रात अपने खेत को देख रहा था और बहुत थका हुआ था, कृपया मुझ पर आप कृपा कीजिए। तो योगी ने कहा जब कोई व्यक्ति 11वें अध्याय, जो व्यक्ति 11वें अध्याय भगवत गीता का पारायण करता है वह तुम पर जल 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 छिड़केगा तो तुम शाप से मुक्त हो सकते हो। तब देख रहे हैं यहाँ पे आशीर्वाद का सिस्टम भी आ गया। तो फिर उस ग्रामीण ने, कौन से ग्रामीण ने, जो सुनंद से बात कर रहा था, कहा हे प्रिय सुनंद आप कृपया अपने हाथ से जल उस राक्षस के ऊपर गिरा दीजिए। एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है, जो भक्त लोग भक्ति करते हैं उनके हाथ से कुछ दिया हुआ प्रसाद भी व्यक्ति को शुद्ध करता है। यहां से हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। कुछ पानी गिरने की आवाज आ रही है, ऐसा क्यों मैं बोला? अच्छा ठीक है, बारिश। जब इस कथा को उस ग्रामीण से सुना सुनंद ने तो वह उसके साथ में गए और राक्षस यहां पे रह रहा था और 11वें अध्याय का उच्चारण करके उस जल को उन्होंने उसके ऊपर फेंका। राक्षस तुरंत ही चतुर्भुज रूप प्राप्त किया जैसे भगवान विष्णु का होता है, और ना सिर्फ वह बल्कि जितने हजारों लोगों को उसने खाया था। देखिए हम तो यह सुने हैं कि हमारे संबंधियों का उद्धार होगा, लेकिन यहाँ कुछ और देख रहे हैं, जिनको खाया था उनका भी उद्धार हो गया। ये कितना अद्भुत है भक्ति। हाँ, और उन्हें जिनको खाया था वह भी चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु के जैसा प्राप्त किए और भगवान के धाम जाने लगे। वह सभी वैकुंठ से आए हुए विमान पर चढ़े और उसके बाद भगवान के धाम चले गए। यह अद्भुत घटना देख करके उस ग्रामीण ने, जिसके बच्चे को राक्षस ने खा लिया था, वह सुनन से पूछने लगा, नहीं सॉरी, राक्षस से पूछने लगा। राक्षस हंसने लगा और उसने कहा, मतलब राक्षस ने पूछा कि मेरा लड़का कौन सा है, सारे चतुर्भुज हो गए, सारे विष्णु रूप स्वरूप दिख रहे हैं, तो मेरा लड़का कौन सा है, ये भी कितना मूर्ख था। लड़का जा रहा है वैकुंठ, सोच रहा है लड़के को यहां रखूंगा मैं। तो उसने कहा, राक्षस भी हंसने लगा, उसने कहा, वो देखो वो लड़का, वो व्यक्ति तुम्हारा लड़का है। तो उस ग्रामीण ने उस लड़के को बोला कि अरे तुम बेटा घर आ जाओ। कौन जाएगा घर, अब वैकुंठ जाने का मौका मिल रहा है, घर कौन जाएगा। लेकिन अपने पिता की इस बात को सुन करके लड़का मुस्कुराने लगा। उसने कहा, बहुत अच्छी बात, ये आप लोग और जगह भी सुन चुके हैं, कई बार मैं आपका बेटा बना हूं और आप मेरे बेटे बने हैं। ठीक है, मैं आज एक शुद्ध भक्त सुनन की कृपा से इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम पे जा रहा हूं। तो इसलिए हे मेरे पिताजी, आप भी सुनंद के चरण कमलों का आश्रय लेकर के उनसे 11वें अध्याय भगवद गीता को सुनिए और इस प्रकार आप भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कृष्ण के श्रीमुख से ये सुंदर वचन, अमृतमय वचन, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में निकला, क्योंकि अर्जुन ने उनसे प्रश्न किए थे। वो अर्जुन क्या प्रश्न किए थे उसको तो हम अध्याय में चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर 11वां अध्याय आधारित है। और इस जो भगवद गीता है, इसके श्रवण और कीर्तन के माध्यम से व्यक्ति जन्म मृत्यु रूपी जो गांठ है, बार बार जन्म लो, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो, ये मुक्त हो सकती है। भगवान शिव कहते हैं इस प्रकार के क्या कहेंगे, बहुत सुंदर वचन बोल करके अपने पिता को, वे सभी जीव भगवान के धाम चले गए, वैकुंठ चले गए। और उनके पिता ने, पिता मतलब उस ग्रामीण ने, सुनंद से 11वें अध्याय भगवद गीता को बोलना सीखा और वह भी वैकुंठ चला गया। हे मेरी प्रिय पार्वती, कौन बोल रहा है, शिव जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस 11वें अध्याय भगवद गीता की महिमा को सुनता है वह भी अपने सारे पाप नष्ट कर लेता है। कितना आसान है ना, बस इतना कठिनाई यह है कि क्लास में आना होगा तब सुनेंगे, बाकी कुछ नहीं, खाली बैठना है और सुनना है, सारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग भगवद गीता को शुरू कर, कुछ शायद प्रश्न तो है नहीं, स्पष्ट है।